ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेकपा एमाले के 11वें महाधिवेशन के लिए चुन लिए गए प्रतिनिधि पोखरा मुगलिंग सड़क के पश्चिम पोखरा जामुने खंड के 12 में से 11 पुल बनकर हुए तैयार। परसा में पिछले समय किसान प्रांगारिक मल की ओर हुए हैं आकर्षित और श्रीलंका में समुद्री आंधी दित्वा के कारण मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 153। पूरे द्वीप पर हुई आपातकाल की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले ने इसी मार्गशीर्ष के 27 से 29 गते तक काठमांडू में होने वाले 11वें महाधिवेशन के लिए आज प्रतिनिधियों का चयन किया है। देश के ज्यादातर स्थानों में सर्वसम्मत प्रतिनिधि ही चुने गए हैं, वहीं कुछ स्थानों में मतदान और कुछ में विवाद हुए हैं। ये जानकारी हमारे संवाददाता ने दी। पार्टी के करीब 6,67,630 संगठित सदस्यों में से लगभग 2,200 प्रतिनिधि चुनने के लिए जिले जिले में प्रतिनिधियों का चयन किया गया है। नेता प्रदीप ग्यामाली ने बताया कि प्रतिनिधि चयन का आज अंतिम दिन है, इसलिए सर्वसम्मत नहीं हो सके सभी स्थानों में आज देर रात तक ही सही प्रतिनिधियों का अंतिम परिणाम आ जाएगा। पोखरा मुगलिंग 38 किलोमीटर सड़क के पश्चिम पोखरा जामुने खंड में 12 में से 11 पुल और 105 कलवर्ट बनकर तैयार हो गए हैं। सड़क परियोजना कार्यालय के मुताबिक सड़क की भौतिक प्रगति अब तक 59.89 और वित्तीय प्रगति 47.80% हुई है। वहीं पूर्वी खंड यानी जामुने मुगलिंग वाला 40 किलोमीटर सड़क खंड का निर्माण अंतिम चरण में है। चालू आर्थिक वर्ष के प्रथम 4 महीने में 16,296 पर्यटकों ने मनांग भ्रमण किया है। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र परियोजना इलाका संरक्षण कार्यालय के प्रमुख ढक बहादुर भुजेल के मुताबिक उस अवधि में 107 देशों के नागरिकों ने मनांग भ्रमण किया है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने एकता ध्रुवीकरण और सहकार्य की प्रक्रिया में सहभागी होने की सभी वामपंथी समाजवादी सच्चा लोकतंत्रवादी और देशभक्त शक्तियों को आह्वान्वित किया है। नेकपा ने आज एक अपील जारी कर मौजूदा राष्ट्रीय परिस्थिति आवश्यकता और जन अपेक्षाओं को दृष्टिगत करते हुए इस ध्रुवीकरण अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल के समक्ष स्मार्ट टेलीकॉम पीड़ितों ने टावर व्यवस्थापन, घर का किराया लगायत समस्याओं के समाधान के लिए पहल कर देने का आग्रह किया है। संचार मंत्री से मुलाकात के दौरान ये बताते हुए कि कंपनी खारिज हुए 3 साल गुजर जाने के बाद भी टावर का व्यवस्थापन नहीं हुआ है, टावर रखने का किराया नहीं मिला है और बिजली तक का पैसा नहीं मिला है, स्मार्ट पीड़ितों ने समस्या समाधान करने का आग्रह किया। जवाब में मंत्री खरेल ने भरोसा दिलाया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और वे प्रशासन से संज्ञान लेकर समस्या समाधान के लिए पहल करेंगे। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। इलाम जिला की इलाम नगरपालिका वार्ड नंबर 9 भंजांग गोलाई स्थित मेची राजमार्ग में आज हुए सवारी हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में इलाम नगरपालिका वार्ड नंबर 9 गोलबस्ती के 26 वर्षीय डेविड थापा मगर और माई जोगमाई वार्ड नंबर 1 नया बाजार के 18 वर्षीय छेवांग शेरपा की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय इलाम ने दी। पिछले समय रासायनिक मल के कारण धीरे धीरे मिट्टी का उत्पादन क्षमता घटते गए और इसके प्रयोग से मानव स्वास्थ्य और प्रकृति में भी गंभीर असर पहुंचने के बाद परसा के किसानों प्रांगारिक और गोबर मल की ओर आकर्षित हुआ है। अभी परसा की ठोरी, पटेरवा, सुगौली, सखुआ, परसौनी गांव पालिका तथा परसा गढ़ी नगर पालिका के किसानों ने रासायनिक मल के बदले प्रांगारिक मल तथा गोबर मल का प्रयोग करने लगे हैं। रासायनिक मल को विस्थापन और बाली का उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए हम लोग प्रांगारिक मल तथा केचुआ से किए गए मल का प्रयोग किया जा रहा है। ये जानकारी बीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 31 के युवा किसान रमाकांत चौधरी ने दी। प्रांगारिक मल तथा केचुए से तैयार किए गए मल के प्रयोग के किए जाने के बाद उत्पादित हुए आलू और तरकारी के स्वाद ही अलग होने की बात किसानों ने बताई। रासायनिक मल के लिए किसानों को सहकारी संस्थाओं में घंटों लाइन लगने की बाध्यता थी। रामेछाप की मंथली नगर पालिका 9 स्थित पुराना गांव में कल रात बाघ के आक्रमण से एक महिला की मौत हो गई। मरने वालों में उसी वार्ड की वर्ष 66 की गंगा माया तामांग शामिल है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय रामेछाप के प्रहरी प्रमुख भोला कुमार भट्ट ने दी। बैतड़ी कारागार में रहे कैदी और पुलिस हिरासत में रहने वालों को स्थानांतरण किया गया है। जीर्ण अवस्था में रहे भवन को नए निर्माण किया जा रहा है, इसलिए वहां रहे कैदी और पुलिस हिरासत में रहने वालों को विभिन्न कारागारों में स्थानांतरण किया गया है। कुल 53 कैदी और 6 पुलिस हिरासत में रहने वालों को डड़ेलधुरा, दारचूला, बाझांग और बांके के कारागारों में स्थानांतरण किया गया है। ये जानकारी कारागार कार्यालय बैतड़ी के प्रमुख धारा भंडारी ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान दितवाह की वजह से हुई भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 153 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 151 लोग लापता है। राष्ट्रपति कार्यालय के मीडिया डिवीजन से डायरेक्टर जनरल प्रसन्ना परेरा ने कहा कि पूरे द्वीप पर आपातकाल घोषित कर दिया गया है। बीबीसी सिंहला सेवा ने उन्होंने इसकी पुष्टि की है। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसेन शहीदी ने बताया कि श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने एनडीआरएफ को 2 टीमें भेजी है। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि श्रीलंका भारत का सबसे नजदीकी समुद्री पड़ोसी देश है, जो बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने आगे बताया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने राहत और बचाव कार्यो के लिए 80 बचाव कर्मियों वाली एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजी है। लगभग 27 टन राहत सामग्री एयरलिफ्ट कर कोलंबो भेजी गई है और समुद्र के रास्ते भी भेजी जा रही है, ताकि उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेकपा एमाले के 11वें महाधिवेशन के लिए चुन लिए गए प्रतिनिधि पोखरा मुगलिंग सड़क के पश्चिम पोखरा जामुने खंड के 12 में से 11 पुल बनकर हुए तैयार। परसा में पिछले समय किसान प्रांगारिक मल की ओर हुए आकर्षित और श्रीलंका में समुद्री आंधी दितवाह के कारण मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 153, पूरे द्वीप पर हुई आपातकाल की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।